ओम शांति। आज के सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। अब दिल्ली की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। राजयोग का अभ्यास करते हुए आपको 38 वर्ष पूरे हुए हैं और हेडक्वार्टर में रहते हुए 28 वर्ष आपने पूरे किए हैं। और आप जो कैड प्रोजेक्ट है उसके रिसर्च प्रोजेक्टर हैं आप, और उसके अंतर्गत आपने कई कैड के प्रोग्राम चलाए हैं और दिल के मरीजों को शफा दिलाई है, जिस कारण से उन दिल के मरीजों के द्वारा आपने दिल वाले डॉक्टर सतीश गुप्ता के नाम से प्रसिद्धि पाई है। इतना ही नहीं, वर्ष 2006 में उस समय के स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने भी आपको प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में उत्कृष्टता के लिए लाइफ अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया। उसके बाद तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने भी आपको सम्मानित किया। तो बहुत ही प्रतिभावान है आप, और न सिर्फ दिलवाले डॉक्टर सतीश गुप्ता हैं, लेकिन दिलाराम बाबा के दिल तख्त पर भी नशीन हैं। तो ऐसे हमारे भ्राता जी हमारे बीच में इस विषय पर प्रकाश डालेंगे, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये स्थिति कैसे बनानी होती है। सुनते हैं भ्राता जी से, आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। चलिए आज का विषय नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। कभी आपने सोचा कि हम कहते काम मां शत्रु है, तो नष्टो काम स्मृति लब्धा नहीं कहा? नष्टो क्रोध कहा क्या? नष्टो क्रोध स्मृति लब्धा कहा क्या? जबकि ये भी महावैरी है इंसान का ना। और फिर नष्टो लोभ भी नहीं कहा? और नष्टो अहंकार भी नहीं कहा? क्या कहा? लास्ट का एक पेपर कौन सा है? नष्टो मोहा स्मृति। कितनी देर का है? एक सेकंड का। चलो एक सेकंड में उड़ सकते हैं अभी, एक सेकंड में। चलो दे और दे के दुनिया से मन बुद्धि को समेट के एकदम स्मृति स्वरूप बन जाओ, और शरीर आत्मा बन के परम धाम घर में अश्री बाप से कंबाइन हो जाओ, उस पावर हाउस से कंबाइन हो जाओ। ओम शांति। हम सभी को इस फाइनल क्वेश्चन जो हमारे सामने आने वाला है, पेपर आने वाला है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, एक सेकंड में ये क्वेश्चन जो है, इसका आंसर भी हमको पता है। पता है सभी को नष्टो मोह कैसे बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? देखो, जब भी गीता का सुना, महाभारत का युद्ध, जब दोनों सेनाएं खड़ी हैं, एक तरफ पांडव सेना एक तरफ कौरव सेना खड़ी है, साथ में कौरवों के साथ और कौन खड़ा है? यादवों की सेना भी खड़ी है, नारायणी सेना भी खड़ी है ना। और उसके बीच में जब अर्जुन और श्री कृष्ण का सारथी बनकर के आते हैं, तो क्या पैदा होता है अर्जुन को? मोह पैदा होता है कि सामने जो मेरे सामने कौन खड़े? मेरे ही भाई हैं, मेरे ही गुरु हैं, मेरे ही मामा हैं, मेरे ही चाचा हैं, मेरे रिश्तेदार, मैं इनको कैसे मारूं? तो वो धर्म युद्ध में, धर्म युद्ध था ना, उस धर्म युद्ध में सामने यही पेपर सामने आता है सबसे फाइनल, और उस पेपर में विजय होने के लिए श्री कृष्ण उसको क्या देते हैं? गीता के 18 अध्याय सुनाते हैं, और 18वें अध्याय में लास्ट में नष्टो मोह स्मृति लब्धा। 18 अध्याय सुनने के बाद वो समझता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा। पहले क्या बताते हैं, जब उसके अंदर मोह पैदा होता है कि तुम देह नहीं, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य तुम हो ही आत्मा, और यही आत्मा है, तुम मरने वाले तो नहीं है ये, तो पहले तो ये बताते हैं ना। फिर उसको तो भी उसका मोह खत्म नहीं होता है, फिर उसको क्या सुनाते हैं, सोमान, कि तुम कौन हो, तुम तो सबसे बड़े धनुर्धर हो, तुम्हें तो वरदान मिले हुए। फिर तीसरी बात, उससे भी उसका मोह खत्म नहीं, तीसरी बात क्या सुनाते हैं, तुम अगर विजयी बनोगे तो क्या होगा, स्वर्ग में स्वर्ग का अधिकार तुमको मिलेगा। तो कहता मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं अपने रिश्तेदारों को मार के स्वर्ग में क्या करूंगा जाके। फिर चौथी बार क्या बताते हैं, तो भी उसको विश्वास, तो भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता। फिर कहता उसने कहा सब मरे पड़े, ये तो पहले ही सब मरे पड़े, तो भी उसको विश्वास नहीं होता है, राइट। क्योंकि जब विराट स्वरूप दिखाते हैं फाइनल में ना, कि कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है, कौन तुम्हें ये कह रहा है, और कैसे उस विराट स्वरूप में कैसे कैसे क्या हो रहा है, तब उसको बिलीव, तब उसको विश्वास हो, तब वो धनुष उठाता है। तो ये जो नष्टो मोह स्मृति लब्धा की जो बात हम करते हैं, बाबा ने जो हमें कही है, अब हमारी स्थिति क्या है, अगर हम ब्रह्मा बाबा के देखें, ब्रह्मा बाबा का स्वरूप देखें, ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मचर्य बहुत पहले धारण कर लिया था, काम विकार को छोड़ दिया था, क्रोध तो ब्रह्मा बाबा को कभी किसी ने देखा ही नहीं करते हुए, किसी ने भी नहीं देखा, लौकिक में देखा नहीं और व्यापार में भी नहीं देखा किसी ने क्रोध देखते हुए। लोभ बिजनेस के हिसाब से कह सकते थोड़ा होगा, किंतु वैसे बहुत ही दानी थे, महादानी थे ब्रह्मा बाबा। अहंकार तो ब्रह्मा बाबा को था नहीं, किंतु मोह बहुत था ब्रह्मा बाबा को, यशोदा से भी बहुत मोह था, है ना, और किससे मोह था, नारायण से भी मोह था, राधिका से भी मोह था, निर्मल शांता दादी का तो नाम पहले कुछ और नाम था, लौकिक नाम था, जो बच्चे थे जो भी, उन सब से बहुत मोह था बाबा को, अपने घर में बहु रहा मोह था बच्चों के साथ, बच्चों को अलग चीजों से जाते थे, बढ़िया बढ़िया उनके गहने लेकर आते थे, बहुत मोह था। और जब बाबा को, ऐसे तो 1928 में ही बाबा को, मतलब एक तरह से बाबा एकदम अंतर्मुखी हो गए थे, बाबा सारा टाइम एकांत में रहने लगे थे, और बाबा सारा दिन अपने आप से बात करते थे, दरबार लगाते थे रोज, सुना होगा ना, मैंने बाबा की डायरी का सुना है आपने, बाबा की डायरी हिस्ट्री हॉल में रखी हुई है, रोज दरबार लगाते, अंतर्मुखियों के दरबार लगाते थे। हम ब्रह्मा बाबा का देखते हैं, ब्रह्मा बाबा कैसे, अगर हम, क्योंकि हमें फॉलो फादर करना है ना, तो कैसे ब्रह्मा बाबा नष्टो मोह स्मृति लब्धा बने, तो ब्रह्मा बाबा को 1934 में विनाश का साक्षात्कार हुआ, तो ब्रह्मा बाबा को बेहद की वैराग्य, अंतर्मुखी तो ब्रह्मा पहले से थे, बेहद की वैराग्य वृत्ति और आ गई। ब्रह्मा बाबा तुरंत जैसी मां बनारस में बाबा को, बाबा ने विनाश देखा कैसे विनाश हो रहा है, तो ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार किया, और हमने क्या किया, तब तो विनाश नहीं हुआ था 1930, अब तो क्या हो रहा है, अब तो विनाश प्रैक्टिकल में हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, तब तो मिसाइल बनी भी नहीं थी, तब तो, अब तो मिसाइल प्रैक्टिकल में चल रही है, चल रही, तब तो एटम बम बना भी नहीं था, हाइड्रोजन बम बना, तो हाइड्रोजन बम बन गया है, एटम बम बन गया है, और तैयार है, सिर्फ क्या आवश्यकता है, एक बटन दबाने की आवश्यकता है, नहीं, ऐसी स्थिति तो कभी बनी नहीं थी जब जैसी स्थिति अब बनी हुई है, एकदम दोनों तरफ से पूरी पूरी तैयारी है, सिर्फ बटन दबाने भर की देर है। बाबा ने एक मुरली में कहा विनाशकारी आत्मा विनाश करने के लिए तड़प रही है, नहीं तड़प रही, और हम स्थापना करने वाली आत्माएं स्थापना करने की तड़प रही है क्या? तड़प रही है, नहीं तड़प रही, तड़प रहे क्या क्या ले? जितनी लगन उनके अंदर है, हमारे अंदर जितनी लगन है, वो तो रोज कहते हैं हम बटन दबाते बटन दबाते बटन दबाते, ब्रह्मा पापा उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि मेरे बच्चे अभी तैयार नहीं, वो भी नष्टो मां स्मृति स्मृति स्वरूप नहीं बने, नहीं तो कब बनेंगे? आज आज शाम तक बन जाओ तो 7:30 बजे तक, तो 7:30 बजे बटन दबा दें, नहीं नहीं इधर गीत बजेगा उधर बटन दबेगा, है ना? क्या ख्याल है? आज से ना मुरली में हाहाकार के बाद जय जयकार होने, आज की मुरली पढ़ो तो क्या लगता है? अपने आप ही नष्ट हुआ बन जाए ना, स्मृति स्वरूप बन जाए। आज की मुरली सारी ऐसी है, एक एक महावाक्य को गहराई में जाओ ना, कैसे निराकार शिव बाबा कैसे उधार का तन लेके बच्चों से बात करते हैं, हम भी हम निराकार आत्माएं किंतु हमारे पास अपना अपना तन है छोड़ के जाना है। तो आज ब्रह्मा बाबा की भी वही स्थिति थी ना, ब्रह्मा बाबा अर्जुन और शिव बाबा जब उनके रथ में आ गए, उसके बाद बाबा को तो पहले विनाश का साक्षात्कार हुआ, और बाबा ने तभी से बेहद की वैराग्य वृत्ति हो गई बाबा के अंदर, अनासक्ति वृत्ति हो गई, आसक्ति खत्म हो गई बाबा के अंदर कुछ भी देखने कुछ सुनने की। बाबा पहले बहुत यात्राएं करते थे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, बाबा की आसक्ति खत्म, कुछ देखने दुनिया गई गई चली गई दुनिया, बस बाबा ने साझेदार को बोल दिया बस मुझे और बिजनेस नहीं करना, मेरा हिसाब किताब कर दो। और फिर ब्रह्मा बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ, दो बार चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, फिर स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ, हमें हुआ नहीं हुआ स्वर्ग का साक्षात्कार? चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ है हमको? नहीं हुआ, हम समझ तो गए ना, तो ब्रह्मा बाबा को इतना समझ में नहीं आया हुआ उसमें कि चतुर्भुज कौन है, हमें तो रोज सुनते हैं चतुर्भुज क्या है, विष्णु कौन है ना, समझ में आया नहीं? तो बाबा को तो हमने इतना समझा है। और फिर लास्ट में 1936 में बॉम्बे में बबुलनाथ मंदिर के सामने जो घर था ना, उसमें बाबा को शिव बाबा की पधरामणी हुई, घर में सत्संग चल रहा, जैसे शिव बाबा की पधरामणी हुई तो बाबा ने अपना उस समय से ही अपना तन पुराना तन, उसके बाद बाबा ने कभी नहीं कहा मेरा मेरा ये मेरा तन है, बाबा की अमानत है, बाबा का रथ है, कभी नहीं कहा ये मन मेरा है, बाबा का मन है, कभी अपना संकल्प चलाया नहीं कोई बात के लिए, कुछ भी थोड़ी समस्या भी आई तो बाबा के लिए संदेश भेजा, संदेशी को भेजा जाओ बच्चे जाओ बाबा से पूछ के क्या करना, छोटी छोटी बातें भी बाबा से पूछवाई, कभी अपने मन का संकल्प चला नहीं ऐसे कर लेते हैं, बाबा तो इतना अनुभवी थे ना, पर बाबा ने कभी अपना मन चलाया क्या? नहीं, कभी नहीं चलाया। और हम हर बात में बाबा की राय पूछी, फिर धन पूरा धन एक माताओं क्या वो बना करके कमेटी बना के दे दिया कि तुम कभी फिर उसके बाद कभी कहा ये मेरा धन है क्या? कभी कहा कि मेरे धन से यज्ञ चल रहा है, ऐसा कहा? और संबंध जैसे शिव बाबा की पधारमणी हुई उसके बाद कभी कहा यशोदा मेरी पत्नी है, नारायण मेरा बेटा है, राधिका मेरी, क्योंकि बाबा क्या प्रैक्टिस करते थे, दीवारों पर लिखते रहते थे मैं आत्मा हूं, राधिका आत्मा है, यशोदा आत्मा है, कितना प्रैक्टिस करते थे बाबा, कितनी लगन थी बाबा के अंदर। तो सारी मोह की जड़ क्या थी? संबंध। तो ब्रह्मा बाबा अर्जुन और शिव बाबा उनके व्रत में बैठ गए, शिव बाबा कौन बैठ गए? श्री कृष्ण समझ लो या परमात्मा। और तब बाबा को ये ज्ञान आत्मा का ज्ञान और स्वमान दिए कि तुम्हें यह स्वर्ग बनाना है, तुम्हें यह नई दुनिया बनानी है। तो तब बाबा को ये जो फिर स्वर्ग के बारे में बताया, फिर सारा बाबा को जो ज्ञान दिया, भिन्न भिन्न मुरलियां चली इतने साल, ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया प्रैक्टिकल में, बाबा ने अंतर्मुखता माना, बाबा ने बाबा के हर कार्य में अंतर्मुखता का अर्थ क्या है, अंतर्मुखता का अर्थ क्या है बताओ, अंतर्मुखता का अर्थ है कि यहां पे देखो ना, सोचने की आत्मा यहां है ना, तो दो मुख्य शक्तियां होती हैं आत्मा की, कौन कौन सी, बुद्धि और मन ना? संस्कार तो बाहर हमारे कर्मों में दिखाई देते हैं, तो बुद्धि यहां है और मन सारे शरीर में फैला हुआ है, तो मेरे सोचने में और मेरे निर्णय करने में आत्मिक शक्ति है। अगर हमें सचमुच में नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनना है तो मेरे सोचने में आत्मिक शक्ति है, आत्मिक शक्ति माना ये सत्य की समझ है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, कैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहा है, और ड्रामा का राज क्या है, चाहे घर चाहे अपने शरीर, मुझे शरीर जैसा मिला है उसमें जो भी मुझे परेशानियां बीमारियां मिली हैं, परिवार में जो साथी संबंधी मिले हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे मिले हैं, स्थान कार्य करने के स्थान पर जो भी साथी मिले हैं, मेरे पड़ोसी जो मिले हैं, सब है ना, जो भी मिले हैं वो पिछले जन्म कर्मों के हिसाब किताब से मिले हैं, उनसे मेरा जो भी संबंध संपर्क है वो भी पिछले जन्म कर्मों का हिसाब किताब है, वो जैसा मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं वो भी पिछले जन्म कर्मों का हिसाब किताब है। इस सत्य की समझ के साथ मैं सबसे व्यवहार करता हूं, ऐसा सोचता हूं, इस सत्य एबीसीडी के साथ आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, इससे कंबाइंड होकर स्थिति में स्थित होकर मैं सोचता हूं, निर्णय करता हूं, पवित्र स्वरूप स्थिति में स्थित होकर कर्म करता हूं, सोचता हूं वो निर्णय करता हूं, मतलब मेरे ये सोचने की शक्ति निर्णय की शक्ति में आत्मिक शक्ति है, वो सातों गुण है, ज्ञान स्वरूप पवित्र स्वरूप शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप आनंद स्वरूप, आठ शक्तियां से भरपूर होकर मैं सोचता हूं निर्णय करता हूं, मेरे देखने में सातों एनर्जी है आत्मा की, ज्ञान स्वरूप पवित्र स्वरूप बन के देखता हूं, शांत स्वरूप होकर देखता हूं, प्रेम स्वरूप होकर देखता हूं, सुख स्वरूप होकर देखता हूं, आनंद स्वरूप होकर देखता हूं, तो ये मेरी अंतर्मुखता का मतलब ये है। तो जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू से किया, पहले दिन से किया, क्या हमने करना शुरू किया है? देखो ब्रह्मा बाबा अंत में, ब्रह्मा बाबा को जिसने भी देखा, ब्रह्मा बाबा को बेहद प्यार था बच्चों से, नहीं था, हर बच्चा क्या बोलता था, दादियों से पूछते थे, दादियों से बात करो, क्या कहते थे, बड़े भाई दादा थे, ऋषरत्न दादा थे, चंद्रास बाबू जी थे, और भी जो बड़े भाई बाबा के साथ पालना लिए हैं उनसे बात करो, बस बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, बाबा मुझे मेरा बाबा ने, हम भी क्या बोलते हैं सारे, हालांकि ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं है पर्सनली, किंतु हमारे मन से क्या, दिल से क्या निकलता, मेरा बाबा, तो वो भासना कितना प्यार, किंतु ब्रह्मा बाबा के प्यार में स्वार्थ नहीं था। मोह कब पैदा होता है, जहां स्वार्थ होता है प्यार में, उसे ही मोह कहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने सभी शरीर छोड़ा इसी कमरे में, जो ब्रह्मा बाबा कमरे ना, बाबा कमरा जिसे कहते हैं, इसी कमरे में, तब हालांकि सभी बच्चे सामने थे, किंतु सभी मुरब्बी बच्चे बाबा साहब सामने थे, जरा भी मोह रहा एक सेकंड में बाबा उड़ गए, तो वो स्थिति होशो होवाश में थे, ऐसा नहीं कोमा में चले गए थे, ठीक ठाक थे, वे मुरली सुना के अंदर आए थे, बस ऐसे चले गए, एक सेकंड में आत्मा उड़ गई। तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा का परफेक्ट एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा ने नहीं बने, और कभी भी किसी बच्चे ने ये उनके अंदर मोह नहीं देखा, बेहद का प्यार देखा सबने, किंतु मोह नहीं देखा, ब्रह्मा बाबा किसी से स्वार्थ था ही नहीं। तो हम अगर ब्रह्मा बाबा के हर एक 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 एक, एक, एक कदम को फॉलो करें तो हम भी ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोह स्मृति लब्धा बन सकते हैं। तो पहला कदम अंतर्मुखता था बाबा का, कि बाबा सदा ही अंतर्मुखी रहे, चाहे आप शुरू में देखो, बिगनिंग में देखो, 1928 से देखो, 32 की तो डायरी ही बाबा की यहाँ रखी है, आप देख सकते हैं। लच्छू दादी तो हमें दिखाती थी डायरी, हम पढ़ते थे बाबा की डायरी। सिंधी के शब्द थे उसमें हिंदी की हुई थी डायरी में, अभी भी देखेंगे तो हिंदी की हुई है उसके ऊपर, क्योंकि बाबा सिंधी में लिखते थे। तो वो तो बाबा का परफेक्ट पहले से था। देखना पर सुनना भी क्या, आत्मिक शक्ति से भरपूर होकर सुनना, बोलना भी आत्मिक शक्ति से भरपूर होकर बोलना, खाना भी आत्मिक शक्ति से भरपूर होकर खाना, किसी से व्यवहार में आना भी तो आत्मिक शक्ति से भरपूर होकर आना, इसे कहते हैं अंतर्मुखता। और फिर जब अंतर्मुखता का अंतर का सुख लेना शुरू कर दिया, जब अंदर से सुख आना शुरू हो गया, तब बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा तब से मतलब बेहद का वैराग, माना बेहद माना अनलिमिटेड ना, सारे विश्व की हर आत्मा से हर वस्तु से ना वैर ना राग, ना काहू से दोस्ती ना काहू से प्यार, सबसे रिटैच हो गए। दुनिया जाने वाली, दुनिया मरी पड़ी है, तो बेहद का वैराग आ गया। जब बेहद का वैराग आया और अंदर का सुख आना शुरू हुआ, अभी अभी कोई बाबा शिव बाबा आए नहीं है, सिर्फ आत्मा का सुख ले रहे हैं ना, और अंदर से उसको महसूस कर रहे हैं, तो अनासक्त वृत्ति हो गई। अनासक्त माना आसक्ति पूरी हो गई, आसक्ति माना ना देखने की कोई इच्छा रही, ना कुछ पढ़ने की इच्छा रही। कोई पहले बाबा शास्त्र पढ़ते थे, चीजें पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे, कुछ इच्छा नहीं रही, ना सुनने की इच्छा रही, ना बोलने की इच्छा रही, ना खाने की इच्छा रही, ना कुछ पहनने की इच्छा रही। कोई आए कोई चीज ऐसे लेकर के, कोई चीज में इच्छा नहीं, कोई कुछ भी लेकर के आए, बाबा ने कभी नहीं पहना, बाबा ने कभी भी कोई चीज ऐसी पहनी नहीं, किसी की दी हुई चीज पहनी नहीं। तो ऐसी स्थिति हमारी है क्या? ऐसी स्थिति है, हमने ऐसी स्थिति बनाई, अंतर्मुखी रहते हैं। अब आप भट्टी में आए तो आप, हम अंतर्मुखी हैं, है अंतर्मुखी, चेक करना चाहिए। ये मोबाइल हमें कहां लेके जाता है, कहां से जोड़ता है, दुनिया से जोड़ता है, हमें कहां से जुड़ना है, अंदर से, स्वयं से जुड़ना है ना। तो ये अटेंशन होना चाहिए ना, पर नहीं होना चाहिए। अगर 3 दिन में हम ये कर लेना, हम तो जो हाट का प्रोग्राम होता है ना, लोगों का आते ही पहले मोबाइल जमा करा लेते हैं, और जब मोबाइल जमा नहीं करता उसको कहते हैं जाओ हम प्रोग्राम में नहीं रखेंगे। 7 दिन के बाद ही जाने वाले दिन मोबाइल लेते हैं वापस, तो 6 दिन तो बिल्कुल मोबाइल से दुनिया से डिस्कनेक्ट रहते हैं। तो हम अंतर्मुखी बनना बहुत बहुत आवश्यक है। अभी भी आपकी भट्टी के कितने दिन बाकी हैं, 2 दिन बाकी है ना, 2 दिन के लिए भी अंतर्मुखी हो जाओ, बड़ा वंडरफुल अनुभव होगा, है ना। और बेहद की वैराग्य वृत्ति, बस किसी चीज से भी, आज की मुरली भी मैं ऐसी बता रही है, कोई चीज से भी लगाव नहीं, किसी चीज से भी न वैर न राग, अनासक्त कुछ खाने पीने की इच्छा, जो नॉर्मल थोड़ा शरीर के लिए जरूरी उतना ही खाएं, बस जरा भी को बुद्धि इधर उधर ले जाए नहीं, एक बाबा बुद्धि में निरंतर रहे। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति बनाए, राइट। तो भट्टी का मुझे याद आता जब हम मधुबन में थे ना शुरू में, तो बहुत एकांत में बहुत भट्टी जब होती थी मधुबन में, तो ऐसे एकांत में हम फरिश्ता बन के चलते थे, यहां से नक्की लग जाते थे, फरिश्ता बन के गए, फरिश्ता बन के चक्कर लगा रहे, यहां चक्कर लगा रहे, ऐसे बस सुबह से 4 बजे सारा दिन भट्टी में लगते, सुबह सारा दिन लगन, सिर्फ एक नहाना, सुबह स्नान किया उसके बाद खाना खाया और उसके बाद सारा टाइम भट्टी में था। बातचीत का तो मतलब ही नहीं किसी से कोई कुछ से मतलब ही नहीं, क्वेश्चन जनरलाइज, एकदम मुख का मौन और मन का मौन दोनों आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति बननी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारी स्थिति है, जब अनासक्त वृत्ति होती है तो उपराम वृत्ति होती है, तो बुद्धि और मन जाके ऊपर लगते हैं, और बुद्धि और मन जब ऊपर लगता है ना तो क्या होता है, तब एक के अंत में खो जाते हैं, तब एकांतवासी बनते हैं। और जब एकांतवासी बनते तब उसके जो एक के अंत का सुख, एकांत क्या है, एक क्या है, शिव बाबा क्या क्या है, वो ज्ञान का सागर, तो ज्ञान के सागर के अंत में समा जाते हैं। ज्ञान के सागर का अंत क्या है? क्या है ज्ञान? क्या है सत्य की समझ? क्या है? मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप, हम सब बिंदु, एक बिंदु बाप, ब्रह्मा बाबा के द्वारा सब संबंधों की पालना और प्यार देता है। और ड्रामा क्या है? जो बीत गया, बिंदु बिंदु लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, और बिंदु बन के बिंदु बाप को याद करो, और क्या बन जाओ? तो सारा ज्ञान का सार क्या हुआ? ज्ञान सागर का अंत क्या है? पवित्रता के सागर का अंत क्या है? हम सब आत्माएं बिंदु, बिंदु बन के दूसरे से व्यवहार करें, और परमात्मा की संतान बिंदु के संतान बिंदु, नहीं, यही तो पवित्रता है। इसका अंत क्या? पवित्रता के सागर का अंत क्या है? बिंदु शांति के सागर का अंत क्या है? पास्ट को फुल स्टॉप लगा के बिंदी बन के बिंदी बाप से कंबाइंड होकर हर कर्म करना, ये शांति है। प्रेम के सागर का अंत क्या है? क्या है? हम सब आत्मा बिंदु, आपस में भाई भाई है, एक बाप के बच्चे, तो वो भी बिंदु। अतिंद्र सुख का सागर का अंत क्या है? आनंद के सागर का अंत क्या है? बिंदु नहीं है क्या? तो एक के अंत में खो जाए, बिंदु बन जाए, बस बिंदु बन के बिंदु बाप में समा जाए, उसमें सारे सागर समाए ना। आठों शक्तियों के सागर का अंत क्या है? बिंदु है वो भी। इसी में एकाग्र हो जाए, इसी में एक नामी आ जाए, एकदम व्यर्थ खत्म हो जाए, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल खत्म, व्यर्थ कर्म खत्म हो जाए, एकमत हो जाए, बस एक श्रीमत, एक रस हो जाए। क्या हुआ? स्मृति क्या? और स्मृति क्या चीज होती है? अगर वो स्मृति में एक रस हो गए तो क्या? अब मोह रहा क्या? रहा नहीं, रहा ना। जब हम ब्राह्मण बने, हमें समझ है, ज्ञान मिला है, फिर भी हम स्मृति स्वरूप की बजाय विस्मृति में क्यों आ जाते हैं? बार बार देहाभिमान में क्यों आ जाते हैं? हमारा बाप से पहले पहले वायदा क्या है? क्या वायदा है? यही भी है ना, जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, ये हमारा पहला पहला वायदा है। और ये पहला वायदा निभाया नहीं तो क्या होगा? क्या क्या होगा बताओ? अगर हमने पहला पहला वायदा नहीं निभाया तो बाबा कहते हैं अगर ये पहला पहला वायदा नहीं निभाया तो पहले जन्म में नहीं आ सकेंगे, पहले नंबर का पूज्य पद नहीं पा सकेंगे, पहले नंबर के राज्य अधिकारी नहीं बन सकेंगे, श्री कृष्ण के साथ का संबंध में नहीं आएंगे, दूसरे जन्म में आना पड़ेगा, मंजूर है? तो ये वायदा निभाया, और सब संग तोड़ एक आपके संग छोड़ेंगे, निभाया कि निभाया? तो बाबा कहते हैं कि ये इसको जो ये जो हमने वायदा नहीं, क्यों नहीं निभाते हैं वायदा? बाबा कहते हैं क्या अभी तक अगर अपने आप को देखो, काम विकार जब आता है ना तो चेहरे पे काला पड़ जाता है चेहरा, क्रोध आता है तो लाल हो जाता है, लोभ आता है तो शक्ल पे दिखाई देता है, अहंकार आता है तो भी दिखाई देता है, किंतु मोह पर, बाबा कहते हैं मोह भी छुपा हुआ है तो सूक्ष्म विकार, किंतु मोह भी, बाबा कहते हैं तुम अपने अगर दिल रूपी दर्पण में देखो ना, नॉलेज के दर्पण में देखो ना, सम्मान के दर्पण में देखो, दिखाई देगा कि मेरे अंदर मोह क्या है। नॉलेज के दर्पण में देखो मेरा मोह किस तरफ जा रहा है, सम्मान कि मेरा सम्मान, बाबा ने मुझे क्या सम्मान दिया है, मैं मास्टर से शक्तिवान आत्मा हूं, मैं नूर रतन हूं, बाबा के नैनों का नूर हूं, जहान का नूर हूं, और क्या हूं? मास्टर आनंद का सागर हूं, और क्या हूं? बाबा के मस्तक मणि हूं। कितने समान है? जो बाबा के गुण है उतने ही समान हमारे। तो इतने कर समान जो कर उसके दर्पण में भी देखो अपने आप को, तो क्या होगा? तो मुंह वाली शक्ल अच्छी लगेगी, लगेगी। और सच्ची दिल का दर्पण कौन सा होता है? सच्ची दिल साफ दिल मना क्या होता है? एक दिल तो फिजिकल दिल नहीं, तो हार्ट है ये, तो इसमें तो चारों चैंबर में खून भरा हुआ है, ये दिल नहीं, आत्मा के दिल। आत्मा के दिल में कौन है? सच्चे दिल में, जिस दिल में एक बाबा के अलावा कोई नहीं है, बाबा ही मेरा संसार है। और दूसरा साफ दिल में ना, जिस दिल में एक बाबा की श्रीमत के अलावा जरा भी मनमत परमत नहीं, जरा भी नहीं। अगर देखिए पांडवों की तरफ देखें तो पांडवों की तरफ श्री कृष्ण था, सिर्फ एक श्रीमत थी। कौरवों की तरफ क्या था हाँ? उसमें मनमत भी थी दुर्योधन की, राइट, और परमत भी थी किसकी, शकुनी की और भीष्म की और द्रोण की और कर्ण की ना, कितनी परमत थी, कितनी गुरुमत भी थी, राइट। हालांकि आज बाबा ने कहा ऐसी कोई थी नहीं, ऐसी कोई युद्ध होता है क्या, दुर्योधन द्रौपदी की ऐसे, ये तो मिसाल देते हैं, तो रियल में तो ऐसी बात नहीं है। रियल तो ये बात है, धर्म युद्ध हमारा है, मैं आत्मा अर्जुन हूं और बाप दादा मेरे रथी हैं, सारथी हैं मुझे आत्मा के, मैं आत्मा रथी हूं, अर्जुन हूं और शिव बाबा मेरे सारथी हैं। और लड़ाई किसके बीच में है, आसुरी शक्तियों के बीच में, जो पुराने आसुरी स्वभाव संस्कार मेरे पुराने हैं ना, दुर्योधन दुशासन शकुनी है ना, मेरे अंदर बैठे नहीं पते पुराने स्वभाव संस्कार। और किसमें, पांडव जो बाबा की श्रीमत है ना, उसके बीच में धर्म युद्ध है। और अभी बाबा की श्रीमत क्या कहती है, तो बाबा कहता है अपने सच्ची दिल, अपने दिल में सिर्फ एक बाबा को बसा दो। क्योंकि अभी तक बाबा कहता है, अभी तक जब अभी तक हमें कितने जन्म लिए हैं बताओ हमको, हमने अभी तक 84 जन्म लिए, चलो जब सत्य चरिता के द्वार पर जन्म हमको छोड़ दो, अभी के जन्म गिन लो, अभी पिछले 63 जन्म का पिछले 4-5 जन्म ही देख लो, जो भी जैसा घर में जन्म होता है तो पुरानी बात याद रहती है, पिछले जन्म के संबंधी याद रहते हैं, पिछले जन्म का मैं क्या करता था याद है, या क्या करती थी पिछले जन्म में, मेरा क्या प्रोफेशन था, किस घर में जन्म लिया। तो जैसे ही लौकिक घर बदला, जन्म बदला, तो क्या बदला, नाम भी बदला, धर्म भी बदला है ना, काम भी बदला, जिस घर में थे वैसे ही वैसे का भूल गया। अभी याद है कुछ पिछले वाला तो बाबा कहता है कि तुमको अभी तक हमारा अलौकिक जन्म हुआ क्या, नहीं हुआ तुम्हारा, हो गया ब्राह्मण बन गए, शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा के द्वारा, या यूं कहें कि अवैक्त बाप दादा के द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया है। तो दिव्य ब्राह्मण जन्म हो गया, नहीं हो गया, अलौकिक जन्म हो गया। तो फिर बाबा पूछता है कि तुम्हें अब भी लौकिक संबंधी और लौकिक कर्म क्यों याद आते हैं, तुम्हारे अभी भी लौकिक कर्म क्यों है, लौकिक संबंधी क्यों याद आते हैं, अपनी पुरानी देह क्यों याद आती है। बाबा पूछता है, बाबा कहता है कि जो तुम्हें संबंधी जो मिले थे, कौन से संबंधी, उन्होंने क्या किया, जो उनसे दुख मिली या शांति मिली या सुख मिला। बाबा कहते तो भटकाने वाले, रुलाने वाले और क्या करने वाले, सताने वाले, वो अभी भी याद आते है ना, ठुकराने वाले, क्या 3 बातें याद रखनी चाहिए, कौन सी, भटकाने वाले, रुलाने वाले और ठुकराने वाले, तुम्हें अभी भी उनकी याद आती है। सचमुच में आप देखो अपने जीवन को, हम में से हर एक देखो, जिनसे हमने दिल लगाया, माता पिता से लगाया, भाई बहनों से लगाया ना, हमारे शादी हुई तो हमारे पति पत्नी बने, बच्चों से दिल लगाया, क्या मिला, भटकाया, रुलाया और ठुकराया, नहीं। और ठिकाना देने वाले को हम भूल जाते हैं, ठिकाना देने वाले को भूल गए। जिस बाप ने एक जन्म में इतनी प्राप्ति करा दी, एक ही बाप ने सर्व संबंधों की प्राप्ति अनुभव नहीं किए क्या, नहीं किए, किए कितने संबंध अनुभव किए। बाबा कहते हैं या तो आपने अनुभव नहीं किए हैं, मतलब पूरी तृप्ति नहीं हुई है ना, इसलिए अभी तक हम उन पुराने संबंधों की तरफ जाते हैं, या नहीं किए तो करो ना, फिर अभी कब करोगे, क्योंकि अब हमको जब नया लौकिक जन्म मिला है, ऐसा बाप मिला जो हमें सतत प्राप्ति अभी करा रहा है। और कितने जन्मों की प्राप्ति करा रहा है? 21 जन्मों की। 21 जन्मों की भी नहीं, 84 जन्मों की है ना, अभी करा रहा है। और समय कितना मिला है? एक जन्म में कितने साल मिले बाकी हैं? अगर 7:30 बजे विनाश हो गया तो फिर क्या करेंगे? कितने कितने घंटे बाकी? 40 मिनट भी नहीं है ना, 38 मिनट बाकी है ना, ठीक है ना, तो 38 मिनट बाकी है ना, समझो ना, फिर क्या होगा? अगर हमें किसी भी लौकिक स्वेल, देखो मेन बात तो मोह कहां आता है? जहां हम अपने को ग्रस्ती समझते हैं, नहीं, मेरा मेरा घर, मेरे मेरे मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, नहीं, मेरी कार, मेरा बैंक बैलेंस, नहीं, यही तो जहां जाइए मेरा मेरा आता है ना, वही तो मोह आता है, वही तो आकर्षण होता है ना। कोई भी चीज, देह या देह के संबंध संपर्क, देह के पदार्थ और देह भान के जो पैदा होने वाला, देह विमान से पैदा होने स्वभाव संस्कार, कोई भी चीज, इवन अपना अपना देह मान, अपना देह अभिमान, अपनी पोस्ट, जो हम जो भी हमें दुनिया में थोड़े समय के लिए स्थाई हमको नाम मिलता है, नाम मान शान मिलती है, उसके बीच में और आत्मा के बीच में, उसके बीच में क्या रख दो? देखो दो तरीके हैं इनसे दूर होने के। कौन से दो तरीके हैं बताओ? चुंबक होती ना, चुंबक, एक चुंबक है देह अभिमान, ये देह ना चुंबक है, देह विमान चुंबक है, और देह के संबंध संपर्क भी क्या चुंबक है, क्योंकि आधा कलर से चिपकते आए हैं, नहीं, आधा कलर से उसमें खोते आए हैं, नहीं, आधा कलर से उसकी आदत पड़ी हुई है हमको खोने की उसमें, और जाने अनजाने फिर भी उसमें अभी भी खो जाते हैं। तो जब द्वापर से प्रॉब्लम शुरू हुई तो बाबा ने कहा दो तरीके हैं इसके बचने के, या तो उनसे दूर चले जाओ चुंबक से तो फिर आकर्षण नहीं होगी, या फिर चुंबक और अपने बीच में क्या रख दो, कोई चीज रख दो जिससे उस चुंबक का असर खत्म हो जाए, राइट? तो क्या रखेंगे? वो तो हमें करना, दूर जाना है क्या, घर बार छोड़ के भागना है क्या? गृहस्थी समझते हैं तो प्रॉब्लम आती है ना, अपने को जिम्मेवारी समझते हैं, हद की जिम्मेवारी ले लेते हैं, कि तो हमें उसमें जाना है क्या, हमें तो उसमें जाना नहीं, तो अभी हम क्या करें? तो हम वो तो हमें सन्यासी वाला काम तो करना नहीं है, अभी हम बीच में क्या रख दें? देह अभिमान, देह भान और देह के संबंध संपर्क के भान के बीच में क्या रख दें? अगर संयम रख दें, संयम क्या रख दें? संयम, संयम रख दें तो क्या होगा? अभी फिर हमारा हमें वो खींचेगा नहीं, राइट? तो अपने आप ही नष्ट होगा, उसमें तिलुप्त आ जाएंगे। तो क्या संयम, संयम कैसे आ गए? संयम सही माना क्या है? संयम माने जो नियम मर्यादाएं बाबा ने बना के दी है। संयम कैसे आएगा? बाबा ने कहा अगर स्वयं को याद रखो और समय को याद रखो तो संयम आ जाएगा। स्वयं को क्या याद करना है? शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं, हमको दिव्य दृष्टि का वरदान दे देते हैं, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि का वरदान दे देते हैं। और बाबा ने कहा जैसे दिव्य दृष्टि, अब जो दिव्य दृष्टि मिले, इस दृष्टि से मत देखो, ना अपने को ना दूसरे को, दिव्य दृष्टि से देखो। दिव्य दृष्टि क्या कहती है? दिव्य दृष्टि कहती है कि अपने सत्य स्वरूप को देखो। सत्य स्वरूप हमारा कौन सा है? परमधाम वाला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप को देखो। परमधाम में कैसे मैं आत्मा शिव बाबा के साथ है ना, बिल्कुल समीप, कैसे कैसे मैं साधु गुणों से भरपूर संपूर्ण पावन सत्व प्रधान स्वरूप में हूं, कैसी है मेरी चमक, सबसे न्यारी, जैसे शिव बाबा बिल्कुल उसके जैसी, उस स्वरूप को देखो। उस स्वरूप को अपने अंदर इमर्ज करो, अपने अंदर जब भी देखो उस स्वरूप को इमर्ज करो अपने अंदर। और आदि देवी देवता स्वरूप को देखो, सर्वगुण संपन्न, 36 गुणों से भरपूर, 16 कला संपूर्ण, हर गुण में 100% संपूर्ण निर्विकारी, देहभान का अंश भी नहीं, और मर्यादा पुरुषोत्तम, चारों नियम और चारों मर्यादा में 100% परफेक्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब क्या है? 16 कला संपूर्ण हमको यहां बनना है कि वहां बनना है? सर्वगुण संपन्न यहां बनना है कि वहां बनना है? संपूर्ण निर्विकारी यहां बनना है वहां बनना है? मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म, तो वो अभी हम पर, वो उसको उसको इमर्ज करना चाहिए अपने अंदर, बाहर सामने नहीं, अपने अंदर ही। छत्तीस गुणों को देखो अपने अंदर, 36 गुण मेरे अंदर हैं। 36 गुण कौन से वाले? सबसे पहला गुण कौन सा है? सत्युग। सत्युग का पहला सबसे पहला गुण कौन सा है? सत्यता। सबसे पहला गुण कौन? सत्यता। माना अब ये बाबा की मुरलियों में 72-73 की मुरलियों में ना बाबा ने परिभाषा दी हुई है देवी गुणों की। सत्यता माना अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप में स्थित होकर के हर संकल्प बोल और कर्म करना, किसी बुराई व अवगुण को संकल्प बोल व कर्म से टच भी ना करना, स्वप्न में भी टच ना करना। तो ऐसी स्थिति मेरी निरंतर रहती है, पहली अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप को सदा इमर्ज रूप इमर्ज रख करके हर संकल्प बोल और कर्म करना, संबंध संपर्क में आना और स्वप्न में आना, किसी बुराई व अवगुण को संकल्प से भी टच ना करना, स्वप्न में भी टच ना करना, ये पहला गुण। अगर यही गुण पर ध्यान रहे तो क्या हो जाएगा? यही हमारी दिव्य दृष्टि से इमर्ज रखो सदा, फिर मोह आएगा आएगा आएगा। फिर पवित्रता, पवित्रता माना अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप इमर्ज रखते हुए, और सामने वाले व्यक्ति जो भी है आपके घर में, माता पिता है, भाई बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं, पति है, या कोई भी है, सास ससुर है, इवन आया है घर में काम करने, उसके भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि संपूर्ण पावन सत्व बना स्वरूप, भले वो देवी देवता ना बने, द्वापर में ही आए, पर जब भी वो आत्मा आएगी तो सत्व प्रधान स्वरूप में तो आएगी। उस स्वरूप को इमर्ज करके हम व्यवहार करें, ये पवित्रता है। इसमें कोई लगाव झुकाव प्रभाव टकराव नहीं है, इसमें कोई क्या क्यों कैसे नहीं है, इसमें किसी विकार का भी अंश नहीं है, राइट। इसमें ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी की स्टेज है ना, पांचों स्वरूप की पांचों पवित्रता इसके अंदर है ना। फिर निर्भयता, बुद्धि रूपी आंख परम धाम में लगी रहे, किसके पास? शिव बाबा से कंबाइंड रहे, और मन रूपी आंख सत्युग में सुखधाम में अपने लक्ष्य पे लगी रही, मुझे श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी को वरने के लायक बनाऊं, श्री नारायण को वरने के लायक बनाऊं। सभ्यता, क्या मेरी ब्राह्मणों की सभ्यता बनी है? ब्राह्मणों की सभ्यता क्या है? सुबह सुबह उठ के पावरफुल अमृत वेला करना, सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके बाबा की मुरली में सेंटर पे मुरली में पहुंच के बाबा की गोद में बैठ के सूक्ष्म वतन बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनना, सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन करते रहना, अटेंशन रखना बाबा ने क्या कहा, दुनिया वालों ने क्या कहा वो नहीं। ये ब्राह्मणों की कल्चर है, ब्राह्मणों की सभ्यता है ना, नहीं ये ब्राह्मणों का क्या है, नियम है, राइट। और सोने के पहले सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को देना, हर बात बाबा को बताना, कभी बाबा के साथ सोचाना, ये ब्राह्मणों की क्या है, सभ्यता है। संपूर्ण पवित्रता ब्राह्मणों की सभ्यता है, नहीं संपूर्ण पवित्रता शुद्ध सात्विक भोजन ब्राह्मणों की सभ्यता है, सत्संग ब्राह्मणों की सभ्यता है, बस बाबा और मुरली का संग करना है ब्राह्मणों की सभ्यता है, नहीं है सर। और क्या, दैवी गुणों की धारणा करना ब्राह्मणों की सभ्यता है, कोई भी आसुरी गुण मेरे अंदर ना रहे तो ये ब्राह्मणों की सभ्यता है। तो ये सभ्यता आई है, फरिश्तों की सभ्यता क्या होती है? रहम दिल कल्याणकारी है, सब पे रहम करना और सबका कल्याण करना। देवताओं की सभ्यता क्या होती है? सर्वगुण संपन्न कुशल कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम गुणों में व्यवहार करते हैं, अहिंसा परमोदम, न काम न कामना, काम और कामना छोड़ी तो लाइट का ताज आ गया, क्रोध लोभ मोह अहंकार और इसके बाल बच्चों को छोड़ा तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ गया। ये किसकी किसकी सभ्यता है? देवताओं की सभ्यता है, सभ्यता ही है। जब ऐसी सभ्यता आती तो अंतर्मुखता आती है, तब मेरे हर सोचने में देखने में बोलने में हर चीज में क्या आ जाती है, क्या आ जाती है? अंतर्मुक्त माना आत्मिक शक्ति आ जाती है, तब बेहद की वैराग्य वृत्ति आ जाती है। कहीं अंदर का सुख भर गया ना तो बेहद की वैराग्य, या किसी में भी कुछ भी ना, किसी से अटैचमेंट, अनासक्त वृत्ति उपराम वृत्ति आ जाती है, एकांतवासी बन जाते, इकोनॉमी बन जाती है, वैसे इकोनॉमी एक स्थिति बन जाती है, राइट। तो इस तरह से अपने अंदर सारा दिन मनन चिंतन चलता है तो क्या होगा, छत्तीस में बना हुआ ऐसा। तो ये जो बाबा कहता है अपनी जो दिव्य दृष्टि से अपने को साधन इमर्ज रखो तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती जाएगी। दिव्य बुद्धि जो एक लिफ्ट है ना, रॉकेट है, उसमें ईंधन लग आ रहा है। जितना दिव्य दृष्टि से हम व्यवहार कर रहे हैं उतना उसमें ईंधन आता जा रहा है। ईंधन आ रहा तो क्या हो रहा है, ईंधन मतलब दिव्य दृष्टि लिफ्ट इतनी पावरफुल लिफ्ट है जो एक सेकेंड में मुझे आत्मा को इस देह और देह की दुनिया से डिटैच करके और क्या करेगी, सूक्ष्म शरीर माना क्या, पवित्र मन। जब ये हम संकल्प चल रहे हैं अंदर तो मन मेरा कैसा होता जा रहा है, लाइट का बनता जा रहा है, मेरे विचार कैसे हो रहे हैं उसमें पवित्रता बढ़ती जा रही है, शांति बढ़ती जा रही है, प्रेम बढ़ता जा रहा है, सच्चा प्रेम अतिंद्रिय सुख बढ़ता जा रहा है, आनंद की लाइट आ रही है, शक्तियों की लाइट मेरे सारे शरीर में, शरीर माना सूक्ष्म शरीर माना मन सारे शरीर में फैला है, तो लाइट का शरीर मेरा बन रहा है। और ये आदतें, चार आदतें कौन सी, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, संयम। ये क्या है, संयम, स्वयं और समय को याद किया ना, स्वयं स्वयं क्या, मैं कौन, अनादि ज्योतिबिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप को इमर्ज किया। और समय कौन सा है, अभी परिवर्तन का समय, बाबा आया है मुझे वापस देवी देवता बनाने, नरकवासी स्वर्गवासी बनाने। तो सारा दिन ये स्थिति बनी रहे तो क्या होगा, फिर क्या होगा, संयम आएगा नहीं आएगा, संयम, यही तो संयम है। ब्राह्मणों की कल्चर, ब्राह्मणों की सभ्यता ही हमारे संयम है। ये चार बातें हमने की ना अभी, पावरफुल अमृत वेला, मुरली, सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरण। देखो मुरली बाबा की मुरली ना, बाबा की मुरली तो आप पढ़ते सारा दिन, मैं तो देखा सारा दिन बजती रहनी चाहिए अंदर ना, मेरे अंदर तो बजती है सारा दिन, आपके अंदर बजती सच्ची दिल से, सच्ची दिल में जिस दिन में बाबा के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, जिस दिन में बाबा साफ दिल में जिस बाबा की श्रीमत के अलावा, बाबा की मुरली के अलावा कुछ और है ही नहीं, सच्ची दिल से बाबा बाबा कहते हैं तो अपार खुशी रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी, ये प्रैक्टिकल में महसूस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए मुरली। रिवाइज एंड रियलाइज, रिवाइज माना सच्ची दिल से, सच्ची दिल के स्नेह से बाबा की मुरली को मन ही मन में रिवाइज करो, मनन मन ही मन में रिवाइज करो। और रियलाइज माना सच्चे दिल से महसूस करो, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है, चिंतन करो इसका, इसकी गहराई में चले जाओ, सच्ची दिल के लगन से इसका चिंतन करो और उसमें मगन हो जाओ, कौन कह रहा है, ये इसमें गुह्यता क्या है। दिल से बाबा बाबा माना क्या, बाबा माना कौन, सातों गुणों का सागर, सातों पावर हाउस, मुझे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज, और वो पावर हाउस मन बुद्धि दोनों प्लग उसमें लगा दो, क्या हो जाएगा, बैटरी चार्ज होने शुरू हो गई, करंट आना शुरू हो गया, हार्ट काम नहीं करता है, सांस मुश्किल से आता है, फेफड़ों में सांस भारी होकर आता है, पेट में खाना पचता नहीं है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, कब्जी रहती है, क्या क्यों नहीं बनती, खुशी नहीं है, सांस ठीक क्यों नहीं आ रहा, शांति नहीं है, हार्ट ठीक से चलता क्यों नहीं, प्रेम नहीं है, है ना, दिमाग सिर में दर्द बार बार में क्यों होता है, ज्ञान की समझ नहीं है, राइट, बार बार इंफेक्शन क्यों होता है, पवित्रता की कमी है, बार बार जुकाम क्यों होता है, पवित्र थोड़ी थोड़ी बात को फील कर लेते हैं, ये क्या क्यों कैसे करते थे, फीलिंग प्रूफ, फीलिंग फ्लू लग जाता थोड़ी बात में, है ना, थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज क्यों हो रही है, ठीक ही नहीं होती, आनंद नहीं है, बात बात में उदास हो जाते हो, घुटना खराब क्यों होता है, कमर खराब क्यों होती है, गर्दन खराब क्यों होती है, शक्तियां नहीं है, आठों शक्तियां नहीं है ना, किडनी ठीक से काम क्यों नहीं करती, पसीने बदबू क्यों आती है, सातों गुणों का बैलेंस नहीं है, तो क्यों आज कैसे आएगी वो करंट, बैटरी चार्ज कैसे होगी, कैसे होगी बैटरी चार्ज, सच्ची दिल से उसे जुड़ जाओ ना, सच्ची दिल, सच्ची दिल में, दिल में से कोई बाबा के अलावा कोई है ही नहीं, ना कोई देहभान है अपना, देहभिमान है, देहभिमान के संबंध संपर्क ज्यादा दिल में है, ना देहभिमान का कोई पदार्थ है, ना कोई विकार है, ना कोई मतलब स्वभाव संस्कार है ही नहीं, बस बाबा है और बाबा की मुरली है, मुरलीधर और मुरली, बस और कोई है ही नहीं, तो ऐसे सच्ची दिल साफ दिल से बाबा को जब हम याद करें, उससे बाबा बाबा करें, बाबा बाबा कहने की बात नहीं है, उससे एक संबंध को महसूस करें अलग से। और ये हमारा जो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट है ना, एकदम एक्टिव हो गई, मन बन गया सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर बन गया, और ये संयम जो है ना हमारा क्या बन गया, संस्कार, ये क्या बन गया, चमकीली ड्रेस बन गई, और दिव्य बुद्धि रॉकेट बन, क्या बन गई, लिफ्ट बन गई, इंजन बन गया, एक सेकंड में स्टार्ट हुआ, सूक्ष्म बाप दादा गोद में पहुंच गया। तो क्या हुआ, बाबा गोद में एक संबंध का अनुभव किया, सर्व संबंधों की प्राप्ति, अनुभूति, अनुभव की अथॉरिटी बन गया आज का वरदान, एक एक ज्ञान का पॉइंट, एक गुण की गहराई में जाओ, एक शक्ति की गहराई में जाओ, बाबा की गोद में, जो रियल में जो बाबा तो उसका सागर है ना, पावर हाउस है ना, तो वहां महसूस होती है ना, सच्चे दिल से एक बात को महसूस करना, और फिर बताओ मोह रहेगा, बताएगा एक एक्शन प्लान जो बाबा ने बताया, मुरली में बताया था, बाबा ने कहा उठते ही आप पांच बातों को, पांच मतलब अपने पांच स्वरूप को इमर्ज कर लो, पांच मतलब अपने बातों को इमर्ज कर लो अपनी बुद्धि में। पहला, उठते ही ये ध्यान करो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, परमात्मा की संतान, मैं बाप का बच्चा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, परमात्मा संतान, इमर्ज करो। और अमृत वेले स्थिति में बच्चा बनकर के उस बालक से मालिक बन के उस बाप से कंबाइंड हो जाओ और सर्व प्राप्ति अनुभव कर लो, बीज रूप बन के बीज रूप बाप से कंबाइंड होकर कलवृक्ष जड़ में उस बाबर हाउस से कंबाइंड होकर सारे कलवृक्ष को सकाश दो, सर्व प्राप्तियां बाबा से उस समय करो, सर्व संबंधों की अनुभूति करो, और सर्व संबंधों के सार वाली याद, चार बातें होती ना, पहली दही मन स्थिति है ना, तो जब हम ये ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते हैं ना, उसको बोलते दही मन स्थिति, पुरुषार्थ की स्थिति है, जो बाबा ने मैं सत्य की समझ दी, सारा दिन उसका मनन माना, मन ही मन में रिवाइज करना, चिंतन माना बाबा मुझे ऐसा बनना है, मंथन माना कैसे बनना है, और सिमरण माना जो मक्खन निकला ना, मक्खन क्या निकलता है, इस मुरली से मक्खन क्या निकलता है बताओ, जितना मैं घूटते जाओ घूटते जाओ क्या निकलेगा, पहले सत्य की समझ अंदर और गहरी बैठती जाएगी, तो सत्य की समझ के स्वरूप बन जाएंगे हम, पवित्रता निकलती है इस मुरली को पीसने से, शांति निकलती है, शांति मन पास की बातों को फुलस्टॉप लगा के बिंदु बन के उस बिंदु बाप से कंबाइंड हो जाइए, उसमें स्थित होकर हर कर्म करना, प्रेम निकलता, सच्चा प्रेम माना, सच्चा प्रेम का क्या अर्थ है, बाबा का प्यार कैसा है, अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग ऑन द प्लेनेट, विश्व में हर आत्मा को दिल से सम्मान से उसके हर पार्ट को देखते हुए बिना किसी शर्त के स्वीकार करना और उसकी बराबर पालना करना, चाहे सामने वाला गाली देने वाला हो, गलानी करने वाला हो, इंसल्ट करने वाला हो, चाहे महिमा करने, सबको बराबर बराबर स्वीकार करना और उसकी बराबर पालना, जो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाई, जो ब्रह्मा बाबा गलानी देते करते थे, गालियां देते थे बाबा को, था ना ब्रिज उठे के पीछे साधु था, रोज उठते ही बाबा को गाली देना शुरू करता था, उठते ही, और वो लगातार गाली देता रहता था, तो बाबा के बच्चे बोलते थे बाबा इसको ऐसे भगा दें, नहीं बाबा के तब भोजन बना जाओ, पहले उसको भोग लग गया जाओ देख के आओ, पहले उसको ठंडी कपड़े देना और सब कुछ, उसको बाबा सबसे पहले उसको बुझाते थे, कहते सबसे परम मित्र है मेरा, परम मित्र है, और वो ले लेता खा लेता था फिर भी गाली देता रहता था कि बाबा ने भेजा है, ले लेता था भोजन, ले लेगा सब कुछ, ले लेगा, जरा भी उसको मतलब ये नहीं होता था कि मैं बाबा ने भेजा है कपड़े भेजे, फिर भी वो गाली देता रहता था, उसका नियम था पक्का, तो मतलब बाबा ने कभी उसको ये किया कि नहीं इसको नहीं, इसको नहीं देना, सबको बराबर दिया, हम ऐसे करते हैं क्या, हार्ट की बीमारी क्यों होती है, इसलिए हार्ट की बीमारी होती है, ये मेरा दुश्मन है, इसको मुझसे बात, मुझसे बात नहीं करनी है ना, सबको बराबर अगर आप ट्रीट करो ना, व्यवहार हमारा बदले तो क्या होता है, तो ऐसा हमें बनना है, तो पहला ये हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, क्या करना है, मैं मतलब मैं परमात्म सुनता हूं, उठते ही ध्यान रखना, मैं परमात्म सुनता हूं, उसमें टिक्के बाबा से सारा खजाना लो, मालिक बालक से मालिक बन के सारा खजाना सुबह 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 सब प्राप्तियां बाबा से कर लो। जब सर्व प्राप्ति बाबा से हो गई फिर बुद्धि कहीं जाएगी, फिर तो नष्टम हो जाए ना, स्मृति स्वरूप बन जाएंगे ना, सारा दिन के लिए भर गई ना। और श्री प्रामृत वेला क्यों कहते हैं, अमृत उस ब्रह्म मुहूर्त के समय बाबा को याद कर आनंद की स्थिति में आ जाना। आनंद माना क्या है, सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद। एक तो बाप की याद, बाप की याद टीचर की अलग प्राप्ति है, किंतु सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद उसमें खो गए, लवलीन हो गए, वो आनंद की स्थिति है। उसमें हमारे हाइपोथैलेमस से 9 हार्मोन, पिट्यूटरी से 8 और एक पिनियल ग्लैंड से 18 हार्मोन बैलेंस में निकल जाते हैं। और उस 18 हार्मोन के निकलने से क्या होता है, इसी को 18 अध्याय कहते हैं, गीता के 18 अध्याय ना, जो तो गीता के 18 अध्याय पूरे हो जाते हैं। नष्टो मोह स्मृति लब्धा माना, अब इतने हार्मोन बैलेंस, यही अमृत है जिसे पूरी बॉडी की 80,000 अरब कोशिकाएं और सातों ग्लैंड शरीर की हार्मोनल ग्लैंड उनमें हार्मनी हो जाती है, तो मन और तन की सारी बीमारियां खत्म हैं, जो भी ना कम हो जाएंगी। इसीलिए इसको अमृत वेला, इसलिए कहते हैं सुबह सुबह अमृत बरसता है। तो ये हमें सुबह सुबह अगर आनंद की अनुभूति कर लो तो क्या है, फिर तो सर्व प्राप्तियां हो गई ना, फिर किसी देहधारी की तरह हमारी बुद्धि जाएगी क्या, किसी तरफ जाएगी नहीं, सारा दिन बाबा में बुद्धि लगी रहेगी। तो अमृत वेला करो, पहले ये हमारा, मैं बालक सो मालिक, दूसरी बात मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, फिर लगन लग जाए मुरली के, बाबा की मुरली सुनना, नहा धो के सब साजन सजने के लिए, दीवाने होते ना, दीवाने आशिक माशूक नहीं होते, भागते हैं गोपियां, भागती है ना गोपियां, देखा ना भागते थे श्री कृष्ण की तरफ, तो ऐसे भागते हैं ना, मतलब हम कोई हमें, हम जब अपने घर अपने निकलते हैं, अपने कमरे से निकलते हैं शांति मन में, और मुरली चाहे कॉन्फ्रेंस हॉल में चल रही हो, चाहे वो डायमंड हॉल में चल रही हो, मतलब हमें पता रास्ता दिखाई थोड़ा देता है, हम बस वही मुरली की तरफ भागते हैं, तीर जैसे निकलता है तीर, तीर के मन से धनुष से, बस वो अपने वहां तक पहुंच के बैठ के दम दम लेता है। रास्ते में कौन जा रहा है, कहां पर जाकर नजर पता ही नहीं होता है। तो वो स्थिति है, मैं गॉड बाबा की गोद में, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में बैठ के मुरली सुनो, बाबा मुझे मुरली सुना रहा। तीसरा, जब बाप, जब हम सैर करते हैं नादों के, या जब मुरली के बाहर या मुरली के पहले, मैं रूहानी यात्री हूं, बाबा से कंबाइंड होकर हम बाबा के साथ सैर करें, मैं रूहानी यात्री हूं। तीसरा फिर क्या है, जब हम सेवा पे जाते हैं, खाना भी बाबा के साथ खाओ, जैसे भोजन आया ना प्लेट आपके सामने, बस में प्लेट लेके बाबा के पास चले जाओ, खाली संदेश ही जाते हैं क्या ऊपर, हम नहीं जा सकते सूक्ष्म वतन, अपनी थाली लेके जाओ बाबा के पास ना, फिर बाबा को आप खिलाओ, बाबा आपको खिला दे, ऐसे भोजन खाओ ना। नई नई शादी होती ऐसे ही करते ना, हमारे भी तो नई नई शादी है ना, है ना, वो तो 2-3 दिन करते हैं, हम तो सारा सारी उम्र कर सकते हैं ना, उसके बाद लड़ाई करते हैं सर नहीं, तो हम तो हमारा प्यार तो ऐसा ही नहीं है ना, हमारा तो अलौकिक प्यार है ना, तो आप ऐसे तीनों टाइम ऐसे भोजन खाओ ना, नहीं पानी पियो तो भी उसके साथ पियो, एक घूट वो पियो एक घूट आप पियो, नहीं ऐसा पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, तो ऐसा प्यार होना चाहिए ना बाबा के साथ। फिर मैं रूहानी, फिर वो उसके बाद रूहानी योद्धा हूं, फिर आएगी माया, जब सेवा करने जाओगे ना तो माया आती है ना, नाम मान शान की बात आती है ना, मैं रूहानी योद्धा, वहां पे माया आती है, देवान आता है, देवीमान आता है, पोस्ट आती है, मैं इंचार्ज हूं, मैं निमित्त हूं, है ना, कहता ना तब है ना, क्या मेरे को पूछा ही नहीं, मेरे को पूछते ही नहीं है, है ना। तो ये जब वहां आता है तो चाहे कोई भी सेवा हो, चाहे लौकिक सेवा हो चाहे लौकिक सेवा हो, वहां पे ये वाली फिर रूहानी ये होता, बाबा से कंबाइंड होके ना दिव्य आठों शक्तियां हाथ में हो और बाबा का साथ हो ना, बुद्धि में बाबा का साथ हो और श्रीमत रूपी हाथ में हाथ हो, आठों शक्तियां संपन्न हो, गुणों से और शक्तियां संपन्न होके फिर सेवा में जाना है, चाहे आपकी दुकान है, चाहे ऑफिस है, हॉस्पिटल है, जहां भी काम करते हो ना, चाहे सेंटर है, पहले बाबा से कंबाइंड हो जाओ, फिर निरंतर कंबाइंड रहो। तो ये फिर रूहानी मतलब ना, रूहानी कौन, योद्धा, अटेंशन रखो युद्ध पे है ना, महाभारत लड़ाई है, और शिव बाबा मेरा सारथी है, बाप दादा का सारथी, और मैं अर्जुन है ना, याद रहे वहां पर चाहिए नष्ट मोह स्मृति लद्दा की स्थिति है ना। स्मृति स्वरूप है तो नष्ट मोह तो अपने आप आएगा, मोह तो अपने आप आता ही नहीं, गृहस्थी समझते ही नहीं फिर अपने को ना, फिर बेहद की जिम्मेवारी है, मैं भी सारा विश्व की स्टेज पर हूं, सारा विश्व मुझे देख रहा है, ऐसी स्थिति बना के रखो राइट। तो नष्ट मोह फिर ऐसी स्थिति बनेगी और फिर लास्ट में रूहानी मैं खुदाई खिदमतगार है ना, फिर सिर्फ ये सारा दिन, सारा दिन बस बाबा का मैं खुदा की खिदमत में हूं। और सोने के पहले ये पांच बातें अगर ध्यान रखें, मैं कौन हूं, बालक सो मालिक, दूसरा गोल्डी स्टूडेंट, तीसरा रूहानी यात्री, चौथा रूहानी योद्धा, और चौथा पांचवा खुदाई खिदमत कर। ये पांच बातें अगर याद रखें ना सारा दिन, तो ऑटोमेटिक नष्ट मोह बच जाते। तो 36 गुण अगर आप याद कर लेना, याद है आप सभी को रोज उसकी चीज, अगर ये सबसे अच्छा अभ्यास है, सबसे सुंदर अभ्यास है नष्ट मोह बनने का, पहला सत्यता परिभाषा के साथ उसमें टिक करके पवित्रता, तीसरा निर्भयता बुद्धि वहां और मन सुखधाम में, तो यहां रहेगा मोह, नष्ट मोह होगा नहीं होगा, ऊपर बुद्धि मन सुखधाम में, तो यहां पे तो हम ही नहीं, जब चाहे उड़ जाओ है ना। और फिर सभ्यता, सभ्यता में नियम मर्यादाएं आ गई है ना, फिर अंतर्मुखता, फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति, फिर अनासक्त वृत्ति, फिर उपराम वृत्ति, आपस में कनेक्शन है, फिर एकांतवासी, फिर एकाग्रता, फिर एक नामी, बस पूरा हो गया है ना, फिर वैसे इकोनॉमी, फिर एक रस्तिति, फिर सरलता, 14 गुण धारण करने के बाद सरलता आती है, हर बात में सरल, हर बात में हल्के होने लगते हैं, फिर नम्रता आती है, फिर नम्रता के बाद क्या आता है, फिर दया आती है, फिर रहम आता है, फिर करुणा माना कुछ करने का भाव आता है, फिर क्षमा भाव आता है, क्षमा भाव आने के बाद उदारता आती है, दूसरी गलती को समा देना, फिर मधुरता आती है, मधुरता के बाद धैर्यता आती है, धैर्यता के बाद गंभीरता आती है, फिर रमणीकता आती है, फिर सहनशीलता आती है, फिर दृढ़ता आती है, दृढ़ता आने के बाद संतुष्टता आती है, फिर प्रसन्नता आती है, हर्षित मुक्ता आती है, हर्षित मुक्ता आने के बाद फिर सम्मान में रहकर सबको सम्मान दे सकते हैं, जो इस महीने का अव्यक्त इशारा चल रहा है, फिर निमित्त भाव आता है, सम्मान में रहने के बाद निमित्त भाव आता है, फिर निर्माण स्वभाव, निर्माण भावना पैदा होती है, निरहंकारी, फिर निर्माण माना कंस्ट्रक्टिव भावना पैदा, फिर निर्मल स्वभाव आता है, फिर निर्मल वाणी पैदा होती है, और फिर आज्ञाकारी वफादार, आज्ञाकारी माना सदा पवित्र निरंतर योगी भाव, और फिर वफादार माना मेरा तो शिव बाबा दूसर ना कोई, और तीसरा हाँ जी हाँ, फिर चौबीस के बाद 35वां ईमानदार, रोज सोचा सोचा पोता मेरे बाबा को देना, और फिर फरमान बरदार, जो रोज बाबा के जो फरमान है वो पूरे करना, ऐसे 36 गुणों की लिस्ट रोज रिवाइज करो तो हम आप ही नष्ट मोह स्मृति लगता बने, ऑटोमेटिक हमारे नष्ट मोह नष्ट और स्मृति स्वरूप अपने 36 गुणों की स्मृति इमर्ज रहती है तो नष्ट मोह तो अपने आप खत्म हो जाता है। ओम स्लीप की हमारी स्थिति पर डिपेंड करता है, अगर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है जिसे हम डेल्टा स्लीप कहते हैं ना, तो आपको 5 मिनट की स्लीप भी बहुत है, वैसे अगर नॉर्मल जैसे हम मनुष्यों की स्लीप कहते हैं वो 8 घंटा चाहिए होती है, किंतु कहते हैं 12 बजे के पहले अगर आप 1 आवर स्लीप इज इक्वल टू 2 आवर स्लीप, अगर हम 9 बजे सो जाए तो 3 घंटे में 6 घंटे की नींद हो जाती है साइंटिफिकली, हमने DRDO से एक्सपेरिमेंट करके देखा है, और 2 बजे फिर आप उठ सकते हो, 2 बजे में ना फिर 8 घंटे की स्लीप पूरी हो गई, 10 बजे सोते हो तो 4 बजे उठ के आपकी नींद पूरी, 8 घंटे नींद पूरी हो गई, किंतु अगर 12 बजे सोते हो और फिर 4 घंटे की नींद हुई 4 बजे तक, और 6 बजे तक, 6 बजे के बाद आधी आधी स्लीप नहीं है, मतलब 1 घंटे में आधे घंटे की स्लीप होती है, तो आप देख लो 8 आवर्स इज रिक्वायर्ड, बट इफ यू स्लीप अर्ली 9 बजे सो जाए 2 बजे उठ सकते हो, 8 घंटा पूरा हो गया।